हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकलकर भाग पाई हूँ। उन्हें नहीं पता मैं कहाँ हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं भी ले चलो। मैं उन लोगों के सामने नहीं जाना चाहती, और बात करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता मेरा बॉयफ्रेंड, वो बहुत पावरफुल फैमिली से है। उसने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया, मेरा फ़ायदा उठाया, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो अपने लोगों को भेजकर वो मेरा अबॉर्शन करवाना चाहता है, उस लड़की ने उसी तरह से घबराते हुए कहा। सांस ले लो पहले थोड़ी सी, और किसकी बात कर रही हो तुम, और तुम आखिर हो कौन? आदित्य ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कन्फ्यूजन से पूछा। वो काफ़ी ज़्यादा डरी घबराई हुई लग रही थी। उसने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, और उसने आदित्य का बाजू बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था और डरी हुई सी इधर उधर इस तरह से देख रही थी जैसे कि कोई उसके पीछे आ रहा हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अभी यहाँ से बचकर निकलने में मेरी हेल्प कर दो थोड़ी। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं पर भी प्लीज़, उस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो आदित्य को बहुत ही हैरानी हुई कि इतनी ज़्यादा डरी हुई लड़की भला ऐसे ही किसी अनजान आदमी पर भरोसा कैसे कर सकती है, और इसलिए आदित्य उसे अपने साथ नहीं ले जाने वाला था। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे लेकिन मैं तुम्हें कहाँ पर लेकर जाऊँगा, और क्यों तुम मेरे साथ ही क्यों आना चाहती हो? यहाँ पर इतने सारे और लोग हैं, उनमें से किसी से जाकर हेल्प मांगो, और तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? आदित्य ने उससे कहा तो उस लड़की ने उसी तरह से घबराते हुए कहा, नहीं पुलिस भी उनके साथ ही मिली हुई है, वो मुझे वापस उसी लड़के के पास भेज देंगे। नहीं प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को मैं मरने नहीं देना चाहती, और तुम मुझे अच्छे आदमी लगे इसीलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी, आदित्य ने फिर से काफ़ी रिक्वेस्ट करते हुए कहा। और ये बात बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई भी लग रही थी। तो आदित्य ने उससे कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना बोलते हुए आदित्य वहाँ से आगे बढ़ा और उस लड़की को उसने अपने पीछे आने को कहा, और उसके पीछे आते हुए भी उसने आदित्य की पीठ पर से उसकी शर्ट बहुत ही कसकर अपने मुट्ठी में पकड़ी हुई थी, इस तरह से जैसे छोड़ेगी तो आदित्य कहीं भाग जाएगा। आदित्य को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इस लड़की की हालत देखते हुए उसे वहाँ पर ही छोड़ना नहीं चाहता था, और आखिर उसे अपने साथ पार्किंग एरिया में अपनी कार तक लेकर आ गया और उसे अपनी कार में बिठाया, और फिर सोचने लगा कि आखिर वो उसे कहाँ पर लेकर जाए। आदित्य इस बारे में सोच ही रहा था और उसने अब तक अपनी कार स्टार्ट नहीं की, तो उस लड़की ने कहा, प्लीज़ चलो, वो लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं। उस लड़की को इतना ज़्यादा हाइपर देखकर आदित्य ने अब थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, कौन लोग? कोई तो नज़र नहीं आ रहा। भूत प्रेत हैं क्या जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। और तुम मुझे पूरी बात बताओ कि कौन, किसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया, और वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं या फिर सिर्फ तुम्हारा अबॉर्शन करवाना चाहते हैं? आदित्य ने उस लड़की से पूछा तो उस लड़की ने जवाब में कहा, मेरा बॉयफ्रेंड वेदांत, उससे मैं कॉलेज में मिली थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कॉलेज में नहीं पढ़ता है, और तब तक मैं उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन बाद में मुझे उसकी असलियत पता चली कि वो बस। वो लड़की ये बात बोलते हुए बार बार झांक कर कार की खिड़की से बाहर इधर उधर भी देख रही थी। तो आदित्य ने कहा, नहीं कोई भी नहीं है यहाँ पर, तुम आराम से बताओ मुझे। आदित्य की तसल्ली देने पर उस लड़की ने कहा, नहीं प्लीज़ पहले यहाँ से निकल जाते हैं, किसी भी सेफ प्लेस पर चलो जहाँ पर वो लोग आना पाएं और ना ही मुझे ढूंढ पाएं, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, प्लीज़ हेल्प मी। उस लड़की की बातें और इस तरह से कुछ ज़्यादा ही डरना आदित्य को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे इस सिचुएशन में अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो बता रही है कि वो प्रेग्नेंट है और वो काफ़ी बुरी हालत में भी लग रही है। तो आदित्य ने अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे रवि का फ़ोन कॉल आया। आदित्य ने वो फ़ोन कॉल रिसीव किया और रवि को ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में जाकर उसका इंतज़ार करने के लिए कहा। रवि ने उससे पूछा, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? इस पर आदित्य ने कहा कि वो सब कुछ उसे मिलकर ही बताएगा, और अस्पताल से आदित्य का ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो हॉस्पिटल से निकलकर सीधे वहाँ पर ही आ गया। उसे रास्ते में कुछ आधा घंटा लगा और वो लड़की उसके साथ वाली सीट पर इस तरह से बैठी हुई अपने नाखून को उतार रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खिड़की से बाहर देख रही थी। आदित्य ने एक दो बार उसकी तरफ देखा। वो उस लड़की को इस वक्त अपने घर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन उसकी मदद भी करना चाहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, वो सही कर रहा है या फिर गलत। आदित्य सुनैना की वजह से उस लड़की को घर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि सुनैना की तबीयत अभी ठीक हुई है, और अभी आदित्य को खुद भी उस लड़की के बारे में कुछ ठीक से नहीं पता, तो वो सुनैना को क्या ही बताता और एक्सप्लेन करता। इसके अलावा सुनैना का एग्जाम भी है और वो नहीं चाहता कि सुनैना का ध्यान इधर उधर हो, और अगर उस लड़की से कुछ भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनसे कि बाकी किसी को या फिर आदित्य को प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आदित्य सुनैना को इन सब से दूर रखना चाहता है, इसलिए उसने उस लड़की को घर न ले जाने का ही फैसला किया। रास्ते में ड्राइव करते हुए आदित्य ने उस लड़की से पूछा, एटलीस्ट मुझे अपना नाम तो बता दो, मैं एक अजनबी की मदद कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए ना। और तुम्हारे मॉम डैड, तुम उनके पास क्यों नहीं गई? वो लोग तो तुम्हारी हेल्प करते ना। आदित्य की ये बात सुनकर उस लड़की ने इस तरह से रोते हुए मुड़कर आदित्य की तरफ देखा और कहा, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ और अनाथालय में ही पली बड़ी हूँ, लेकिन कॉलेज टाइम से मैं अपने हॉस्टल में रहती हूँ और मेरा नाम रश्मि है। कॉलेज में ही मैं वेदांत से मिली थी और उससे मिलने के बाद मेरी पूरी लाइफ। इतना बोलते हुए उस लड़की को कुछ याद आ गया और वो रोने लगी, और रोने के आगे वो आगे कुछ बोल नहीं पाई, तो आदित्य ने कार के आगे रखा हुआ टिश्यू बॉक्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और वो लड़की टिश्यू से अपने आंसू पोंछने लगी। कुछ ही देर में आदित्य अपने ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया और वहां पर रवि पहले से ही उसका वेट कर रहा था, और आदित्य की कार अंदर आते देख रवि तुरंत ही उस तरफ आया, और फिर आदित्य ने जैसे ही कार रोकी रवि उसकी तरफ ही आने लगा। कार रोककर आदित्य ने अपने साइड वाली सीट पर बैठी हुई उस लड़की की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, प्लीज रोना बंद करो और यहाँ पर ही रुकना, मैं बस अभी आता हूँ। आदित्य की बात सुनकर उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ धीरे से अपना सिर हिला दिया, और आदित्य अपनी साइड का डोर खोलकर कार से बाहर निकला और कार से थोड़ा दूर जाकर रवि से बात करता हुआ बोला, रवि तुम अपने घर में अकेले रहते हो ना?
हाँ हाँ सर, लेकिन क्या हुआ, आप अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो पता ही है मेरी माँ गाँव में रहती है और मेरे पापा नहीं है, रवि ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। तो आदित्य ने कहा, ग्रेट, फिर तुम एक कम करो, इस लड़की को अभी अपने साथ अपने घर ले जाओ, चाहो तो मेरी ये कार भी ले जाओ, मैं दूसरी कार से घर चला जाऊंगा, और इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में ही रखो, क्योंकि ये बड़ी मुसीबत में है, कुछ लोग इसकी जान के दुश्मन हैं और मुझे इसे कहीं छुपा कर रखना है, तुम्हारा घर इसके लिए परफेक्ट रहेगा, वहां पर किसी को पता नहीं चलेगा। आदित्य की बात सुनकर रवि थोड़ा सा घबराते हुए बोला, क्या, कौन है ये लड़की सर, आप इसे जानते हैं क्या, और कौन लोग हैं जो इसके पीछे पड़े हैं, और मेरा घर, मेरे घर में ही क्यों सर, शिवानी को पता चलेगा तो हमारा ब्रेकअप भी हो सकता है, प्लीज। कार के अंदर झांककर रवि ने उस लड़की की तरफ देखा और वो लड़की अभी भी टिश्यू से अपने आंसू पूछ रही है और बार बार कार से बाहर उन दोनों की तरफ भी देख रही है। रवि को वो लड़की बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लगी और आदित्य उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं मैं इसे नहीं जानता, लेकिन उसने खुद ही मुझे हेल्प मांगी और काफी बुरी हालत में है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया, तुम प्लीज कुछ दिनों के लिए रख लो, क्योंकि अभी सिर्फ मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ, फिर मैं इसका इंतजाम करवा दूंगा, और रही बात शिवानी की, उसे मैं समझा दूंगा कि मैंने बोला ना, तुम दोनों के रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रवि, ओके सर, ठीक है, मैं ले जाता हूँ और कार में बाद में यहाँ पर लाकर पार्क कर दूंगा। आदित्य की बात सुनकर रवि भी उसकी बात मानते हुए बोला, तो आदित्य ने उसके कंधे को हल्के से थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, कर तुम यूज कर लो कुछ दिनों के लिए, और हाँ, इसके बारे में पता करो, इसका नाम रश्मि है और बोल रही है कि अनाथ है, इसके अलावा ज्यादा कुछ बताया नहीं इसने, और हाँ, इसके बॉयफ्रेंड का नाम वेदांत बताया है इसने, बाकी और जब थोड़ी ठीक हो तो इसे पूछने की कोशिश करना, फिर इसके बारे में सब कुछ तो पता लगा ही लेंगे। आदित्य ने रवि से इतना कहा तो उसकी बात का मतलब समझते हुए रवि ने भी फिर से अपना सर हिलाया और फिर कार की तरफ ही बढ़ गया। आदित्य भी वहां से ऊपर ऑफिस चला गया, क्योंकि अब उसने सोचा कि ऑफिस बिल्डिंग में आ गया है, फिर जाकर थोड़ा बहुत काम भी देख लेता है। लेकिन वो लड़की दिमाग से निकल नहीं रही थी, क्योंकि वो उसे काफी अजीब लग रही थी और जिस तरह का बर्ताव वो कर रही थी। ऑफिस में काम करते हुए और इन सब के बीच आदित्य को काफी ज्यादा देर हो गई और उसने सुनैना को कॉल भी नहीं किया, तो सुनैना काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि आदित्य ने उसे ऑफिस जाने के बारे में नहीं बताया था और उसने उसे यही कहा था कि बस वो अन्य से मिलकर वापस आ जाएगा। आदित्य के वापस आने का वेट कर रही है और साथ ही पढ़ाई भी कर रही है, तो उसने भी आदित्य को कॉल नहीं किया। शिवानी आदित्य के साथ बैठी हुई काम कर रही है और वो इधर उधर देखती हुई रवि को ढूंढ रही है, क्योंकि अभी आदित्य के आने से पहले तक तो रवि वहीं पर ही था, लेकिन अब उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो आखिर उसने आदित्य से पूछ ही लिया, सर रवि कहाँ गया है, आई मीन रवि सर, आपने उनको कहीं भेजा है क्या किसी काम से?